नमस्कार भारत, 5 फरवरी रविवार, मैं हूं निखिल रंजन। अमेरिकी सरकार ने इमिग्रेशन बैन को निलंबित करने वाले फैसले के खिलाफ दायर की अपील। पंजाब और गोवा में भारी मतदान, आम आदमी पार्टी ने किया पंजाब में 100 सीटें जीतने का दावा।
11 मार्च को 11 बजे चलाएगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, बहुत भारी बहुमत से सरकार बन रही है, दिल्ली का रिकॉर्ड खतरे में है।
उत्तर प्रदेश में पहले दौर के चुनाव के लिए तेज हुआ प्रचार अभियान, अजीत सिंह बीजेपी को नहीं मानते मुकाबले में।
वो मुझे अब रुझान लग रहा है कि बीजेपी तो लड़ाई में स्लिम मतदाता जो हमारा परंपरागत वोट था वो अच्छी संख्या में आ रहा है और हर जाति के कैंडिडेट्स को जो हमने खड़ा किया है अच्छा समर्थन मिलता है।
अखबारों की समीक्षा और खेल समाचारों के साथ खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले प्रमुख विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। 7 मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर रोक को खारिज करने के अदालत के फैसले को अमेरिकी प्रशासन ने औपचारिक रूप से चुनौती दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले चेतावनी दी थी कि अदालत अगर ऐसा फैसला देती है तो अमेरिका में अब बुरे और खतरनाक लोग दाखिल हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अदालत के फैसले को पलट देने की बात कही थी। यात्रा प्रतिबंध संबंधित कार्यकारी आदेश पर अदालती रोक के बाद 7 मुस्लिम बहुल देशों के लोगों को अमरीका आने वाले विमानों में चढ़ने की इजाजत भी दे दी गई है। अमरीका ने ईस्ट चाइना सी में विवादित द्वीपों पर जापान को अपना समर्थन जारी रखने का आश्वासन दिया है। अमरीकी रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस ने कहा कि अमरीका सनकाकू द्वीपों पर जापान के दावे को मान्यता देता है। चीन भी इन द्वीपों पर दावा करता है और चीन ने अमरीका को इस पूरे मामले से दूर रहने की चेतावनी भी दी है। जेम्स मैटिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीन की पड़ोसी देशों के मामलों में दखल देने की नीति की आलोचना की है।
China has shredded the trust of nations in the region, apparently trying to have a veto authority.
James Mattis कह रहे थे कि चीन इस क्षेत्र में पड़ोसी देशों का विश्वास खो चुका है। पड़ोसी देशों की राजनयिक सुरक्षा और आर्थिक मामलों में दखल देकर चीन ने अपना विश्वास खो दिया है। ये थे जेम्स मैटिस के शब्द, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। पाकिस्तान ने एक 5 साल के बच्चे को लौटाने के लिए भारत का शुक्रिया अदा किया है। 5 साल के इफ्तिकार अहमद को उसके पिता ने पिछले साल भारत ले आए थे। इफ्तिकार को पाकिस्तानी अधिकारियों को कल सौंप दिया गया और अब वो अपनी मां रोहिना कयानी के पास है जो पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में रहती हैं। इफ्तिकार के पिता भारत प्रशासित कश्मीर में रह रहे हैं। रोमानिया में बड़े पैमाने पर कई दिनों से चल रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सरकार ने भ्रष्टाचार के मामलों में मिलने वाले जुर्माने को कम करने के फैसले को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। रोमानिया के प्रधानमंत्री सोरेन ग्रिंदेनु ने कहा कि वो देश को बांटना नहीं चाहते और आज एक आपात बैठक बुलाकर जुर्माना कम करने के प्रस्ताव को वापस ले लेंगे। उनके ऐलान पर खुशी जाहिर करने के लिए झंडे हाथों में लेकर हजारों लोग बुकारेस्ट में जमा हुए। रोमानिया की सरकार ने $48,000 से ज्यादा के भ्रष्टाचार के मामलों में ही आपराधिक मामला चलाने का प्रस्ताव दिया था जिसका काफी बड़े पैमाने पर विरोध हुआ था। रोमानिया के प्रधानमंत्री सोरेन ग्रिंदेनु ने ये कहा।
Am ascultat, și-am văzut, și-am auzit.
मैंने पार्टी और सहयोगियों, गठबंधन के साथियों और नेताओं के पक्ष सुने, आम लोगों की बात भी सुनी। आज प्रधानमंत्री होने के नाते मैं रोमानिया को बांटना नहीं चाहता, रोमानिया को दो हिस्सों में नहीं तोड़ना चाहता। ये थे सोरेन ग्रिंदेनु के शब्द, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। जॉर्डन की वायुसेना ने दक्षिण सीरिया में सीमा पर चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर हमला करने का दावा किया है। जॉर्डन की सेना ने कई चरमपंथियों की मौत का दावा भी किया है। इस हमले में इस्लामिक स्टेट के हथियारों के भंडार और कार बम बनाने के गोदाम को निशाना बनाया गया है। जॉर्डन सीरिया और इराक में चरमपंथियों से लड़ रहे अमरीकी नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा है और करीब 2 साल बाद जॉर्डन की वायुसेना ने किसी भी हमले में हिस्सा लिया है। लीबिया में तटरक्षक दल ने कहा है कि हाल ही में करीब 1,000 प्रवासियों को खतरनाक समुद्री रास्ते से यूरोप जाने से रोका गया है। लीबिया तटरक्षक दल के प्रवक्ता ने कहा कि मानव तस्करों ने एक बचाव अभियान में गोलियां चलाकर दखल देने की अपील भी की जिसे नाकाम कर दिया गया। बीबीसी समाचार।
बीबीसी ईबीसी रेडियो पर रविवार की पहली सभा में आपका स्वागत है। आज आपके साथ निखिल रंजन। जैसा कि आपने समाचारों में सुना, अभी अभी खबर आई है कि 7 मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर जो रोक को अदालत से निलंबित कर दिया गया है, उस फैसले के खिलाफ अमेरिकी सरकार ने अपील दायर कर दी है। सरकार चाहती है कि ये फैसला वापस लिया जाए। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि अमेरिका में अब बुरे और ख़तरनाक लोग दाखिल हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अदालत के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि तथाकथित जज का फैसला बकवास है और इसे पलट दिया जाएगा। हालांकि बड़ी एयरलाइन कंपनियों ने अब इस रोग से प्रभावित देशों के लोगों के लिए अमरीका आने के लिए विमान में सवार होने का रास्ता खोल देने को कहा गया है। पूरा ब्यौरा सुनिए हरिता कांडपाल से।
अमेरिका में 7 मुस्लिम देशों से आने वाले प्रवासियों और शरणार्थियों पर प्रतिबंध के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले पर अदालत ने अस्थायी रोक लगा दी है। इससे तिलमिलाए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अदालत के फैसले को बेतुका करार दिया है और कहा है कि इसे पलट दिया जाएगा।
The American people, safe
अपने साप्ताहिक संदेश में डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे, मैं अमेरिकी लोगों की सुरक्षा की अपनी जिम्मेदारी को कभी भूल नहीं सकता, इसलिए पिछले हफ्ते मैंने देश से आतंकवादियों को दूर रखने के एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को कानूनी चुनौती देने वालों में एक बॉब फर्ग्यूसन ने कहा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। ये प्रक्रिया संविधान के प्रावधान के खिलाफ थी। जिन लोगों के पास वीजा थे और जो सामान्य तरीके से अमेरिका आ सकते थे, उन्हें आने से रोका गया, वो भी बिना किसी सही प्रक्रिया के। ये अमेरिका का तरीका नहीं है और न ही संवैधानिक है। बॉब फर्ग्यूसन के शब्द। सिएटल की संघीय अदालत ने जैसे ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले पर अस्थायी रोक लगाई, वैसे ही अमरीकी कस्टम विभाग ने एयरलाइंस कंपनियों से कहा कि वो इस प्रतिबंध से प्रभावित देशों के लोगों को अमरीका आने वाले विमानों में सवार होने दें। हालांकि यात्रा पर लगाई गई रोक को हटाए जाने के बाद भी इन देशों से आने वाले लोगों के बीच स्थिति साफ नहीं है कि अमरीकी हवाई अड्डों पर उतरने के बाद उनके साथ क्या होगा। मारवा अलनाल अमरीकी नागरिक हैं और सीरिया में काम कर रही हैं। उनके पति के पास अमरीका का सशर्त वीजा है, जिसमें वो अमरीका आने पर स्थायी रूप से यहाँ कानूनी तौर से रह सकते हैं, लेकिन उन्होंने बीबीसी को बताया कि वो अमरीका जाने से डर रही हैं।
A lot of people did advise me to go travel yesterday back to Boston.
कई लोगों ने मुझे बॉस्टन लौट जाने की नसीहत दी, लेकिन मैं विमान में सवार नहीं हुई क्योंकि अभी भी पता नहीं है कि बॉस्टन में उतरने पर वो हमें पकड़ लेंगे या जाने देंगे। मारवा अल नाल के शब्द। वहीं अमरीकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर जिन 60,000 वीजाओं को रद्द किया गया था, उन्हें फिर बहाल किया जा रहा है।
रिपोर्ट सुना रही थी हरिता कांडपाल। इस बारे में और जानकारी चाहिए तो आइए हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर, जहां लगातार खबरें अपडेट हो रही हैं इस बारे में भी और दुनिया की तमाम दूसरी खबरों के बारे में भी।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
बीबीसी रेडियो पर आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत, निखिल रंजन के साथ। और आइए अब रुख करते हैं भारत का। भारत के पंजाब और गोवा राज्य में कल विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले गए। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक शाम 5 बजे तक गोवा में करीब 83 और पंजाब में करीब 75% वोट डाले गए। पंजाब में वोटिंग के बाद सत्ताधारी अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों ने सरकार बनाने का दावा किया है। एक रिपोर्ट के साथ अपूर्व कृष्ण।
गोवा विधानसभा चुनाव में मतदाताओं ने वोटिंग का नया रिकॉर्ड बना दिया। गोवा में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी के गठबंधन से चुनौती मिल रही है। रिकॉर्ड मतदान के बाद हर पार्टी जीत का दम भर रही है। वहीं पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के लिए हुए मतदान के बाद भी हर पार्टी जीत का दावा कर रही है। पंजाब में कांग्रेस के चुनावी अभियान की अगुवाई कर रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दावा किया कि पंजाब के लोगों ने कांग्रेस के वादों पर भरोसा किया है। उन्होंने मीडिया से कहा,
नेचुरली जो हमारे पार्टी का प्रोग्राम है वो एक्सेप्ट किया लोगों ने। दे वांट स्टेबिलिटी, दे वांट गुड गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस के लिहाज पे, क्योंकि 10 साल इन्होंने इनको देख लिया है, सो दे वांट के प्रोग्रेस हो स्टेट में, जॉब्स क्रिएट हो. आम आदमी पार्टी नॉट वेरी मच, कुछ ज्यादा नहीं है. जो आप कह रहे थे मालवा स्वीप कर रही है, नथिंग इज हैपनिंग इन मालवा.
पंजाब विधानसभा चुनाव में पहली बार उतरी आम आदमी पार्टी के नेता भी मतदान के बाद जीत का दम भरते नजर आए. उधर सत्ताधारी अकाली दल भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया कि एक बार फिर वोटरों ने उनके गठबंधन के लिए समर्थन की मुहर लगाई है. अकाली दल के सांसद रंजीत सिंह ने कहा,
117 सीट में से हम मेजोरिटी, क्लियर मेजोरिटी खड़ेंगे श्रोमणी अकाली दल भारतीय जनता पार्टी. हमने जो 10 साल काम किया है विकास का, डेवलपमेंट का जो किया है, इतना तो उन्होंने 60 साल में नहीं किया. जो कांग्रेस वाला है, जो आम पार्टी के लोग हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है ठोस. मुद्दे के बगैर लोग वोट नहीं डालते. वो देखते हैं कि पंजाब में गाँव में, शहरों में, कस्बों में वो तरक्की हुई है. जो पिछली बार सरकार बनी थी उस दफा भी ऐसे ही बोलते थे कि ये हो गया वो हो गया, लेकिन आपके सामने आज सरकार हमारी बनी थी.
मतदाताओं ने क्या फैसला सुनाया है ये वोटिंग मशीन में दर्ज है, इसकी जानकारी 11 मार्च को होगी. तब तक राजनीतिक दलों के बीच अपनी जीत के दावे करने और विरोधी को खारिज करने का दौर थमता नहीं दिखता.
रिपोर्ट सुना रहे थे अपूर्व कृष्ण, और बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने कि इस तरह के दावे तीनों पार्टियां कर रही हैं. और राजनीतिक दलों में जो आम आदमी पार्टी है उसके नेता भगवंत मान ने दावा किया है कि पंजाब के लोगों ने बदलाव के लिए आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट दिया है. भगवंत मान से बात की हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने.
देखिए, सबसे पहले तो मैं पंजाब के लोगों को ये बताई देना चाहूंगा कि उन्होंने अपने डेमोक्रेट राइट का खुलकर, बहुत ही ज्यादा खुलकर इस्तेमाल किया. 80% के आसपास ओवरऑल टर्नओवर है, और जलालाबाद में तो 89% को टच कर रहा है. तो इसका मतलब लोगों ने ईवीएम मशीनों का बटन दबा के अपना गुस्सा निकाला है.
आप ये संकेत इस तरह से ले रहे हैं, अकाली दल के कुछ नेताओं से हमारी बात हुई थी, उनका कहना था कि पिछली बार की तरह इस बार भी नतीजे उनके हक में होंगे, और कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि ये जो
करने दो,
जो बदलाव
लोगों ने बता दिया है, 11 मार्च को 11 बजे ईवीसी चलाएगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, बहुत भारी बहुमत से सरकार बन रही है, दिल्ली का रिकॉर्ड खतरे में है.
आपको ये संकेत किस तरह से मिल रहे हैं मान साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा.
लोगों से मैं मास्टर्स में रहा हूं. कांग्रेस कहां थी पिछले दो महीने से कांग्रेस तो टहने जाने बैठी थी ना, अपने अपनी टिकटें बचाने के चक्कर में पड़े हुए थे. भगवंत मान रैलियां कर रहा था, 231 रैलियां पिछले 72 दिनों में. इसका मतलब मैं लोगों में था और लोग मुझे बता रहे थे. मैं मासेस में था, गाँव में था, मैं शहरों में था. रात के 10 बजे भी मेरी रैली, सुबह 7 बजे मेरी रैली में 20,000 आदमी. इट मीन्स समथिंग, कुछ ना कुछ तो है जो इस 4 तारीख को जो आज लोगों ने कर दिया, ये क्रांति का संकेत.
तो 11 मार्च के जो नतीजे हैं आप मानकर चल रहे हैं कि वो आपके हक में होंगे?
100 से ज्यादा सीटें आएंगी, लिख लो और ये टेलीकास्ट करो.
आपका मुकाबला किससे आपको लग रहा है, कांग्रेस है, अकाली दल है?
देखिए, मुकाबला हमारा महंगाई से, गरीबी से, बेरोजगारी से, कैंसर से, माफिया राज से, गुंडागर्दी से. हाँ, अकाली दल बहुत सख्त मुकाबला सेकंड और थर्ड नंबर पर आने के लिए है. मेरे ख्याल में 1 या 2 सीटों का ही चक्कर होगा और मैं तो यही कहूंगा कि काम को कबीलों में मत बांटिए, लंबे सफर को मिलों में मत बांटिए. एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदी और झीलों में मत बांटिए.
आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान से बात कर रहे थे वात्सल्य राय. इधर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले दौर की वोटिंग के पहले राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग तीखी हो गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक रैली में लोगों से कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन और बहुजन समाज पार्टी को खारिज करने की अपील की. कांग्रेस सपा गठबंधन और बहुजन समाज पार्टी ने प्रधानमंत्री के बयान पर तीखा पलटवार किया. एक रिपोर्ट के साथ वात्सल्य राय.
उत्तर प्रदेश में 11 फरवरी को होने वाली पहले दौर की वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम उत्तर प्रदेश के वोटरों से रूबरू हुए. प्रधानमंत्री मोदी ने मतदाताओं को बताया कि वो भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुने. मेरठ की रैली में मोदी ने लोगों को स्कैम का नया मतलब बताया. मोदी ने कहा, जब तक स्कैम दूर नहीं होगा उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है.
भाजपा की लड़ाई स्कैम के खिलाफ है. स्कैम का मतलब है समाजवादी सी कांग्रेस, ये अखिलेश एम मायावती, इनके खिलाफ हमारी लड़ाई है. जब तक उत्तर प्रदेश को स्कैम से मुक्त नहीं करोगे, उत्तर प्रदेश में सुख चैन के दिन लौट करके नहीं आएंगे.
प्रधानमंत्री मोदी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर भी सवालिया निशान लगाया। वहीं गठबंधन के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी की भाषा पर सवाल उठाया। प्रधानमंत्री की रैली के बाद कांग्रेस नेता शकील अहमद ने कहा,
वो घबराए हुए हैं और घबराए हुए इसलिए हैं कि अगर बिहार जैसी गति लगता है उससे भी खराब उत्तर प्रदेश में होने वाली है तो उनकी पार्टी में विद्रोह हो जाएगा उनके खिलाफ और अमित शाह जी के खिलाफ, तो इसलिए प्रधानमंत्री का घबराना स्वाभाविक है। और घबराहट में प्रधानमंत्री स्तर से नीचे की बातें, स्कैम का मतलब है, ये प्रधानमंत्री की भाषा है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री, तो एक प्रधानमंत्री की ये भाषा होती है चुनाव में। और लगता है कि प्रधानमंत्री दिन भर बैठ करके तुकबंदी और जुमलेबाजी का ही अमित शाह जी और ये प्रोग्राम बनाते हैं।
उधर बहुजन समाज पार्टी को भी प्रधानमंत्री का अंदाज रास नहीं आया। बहुजन समाज पार्टी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का संविधान पर भरोसा नहीं है। बीएसपी नेता गया चरण दिनकर ने कहा,
ऐसी बातें जिन बातों का कोई मतलब नहीं है, जिनका कोई परिणाम नहीं निकला, हम 100% खारिज कर रहे हैं उनकी बातों को। भाषण देने के अलावा नरेंद्र मोदी जी के पास कुछ भी नहीं। लोकतंत्र में जन कल्याण के लिए बात रखनी चाहिए, लोक कल्याण के साथ साथ जन हितों की बात करनी चाहिए कि उनका विजन क्या है, वो क्या करेंगे, जनता के हित में क्या करेंगे। इस मामले पर वो फेल हुए। इनका ना तो संविधान पर भरोसा है, ना देश की गरिमा पर भरोसा है।
उत्तर प्रदेश का सियासी संग्राम सभी दलों के लिए साख का सवाल बना हुआ है। ऐसे में ये तीखी जुबानी जंग हाल फिलहाल थमेगी ऐसा नजर नहीं आता।
रिपोर्ट सुना रहे थे वात्सल्य राय। उत्तर प्रदेश का चुनाव अजीत सिंह और उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के लिए अस्तित्व की लड़ाई बन गया है। उन्हें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में जगह नहीं मिली और इसके बाद वे राज्य में करीब 300 सीटों पर अकेले दम पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि पार्टी का जनाधार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, जहां 11 फरवरी को चुनाव होने हैं। अजीत सिंह ने बीबीसी संवाददाता प्रदीप कुमार से बातचीत में कहा कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी तो मुकाबले में है ही नहीं।
देखिए, लोग पिछली कई सरकारों के कामकाज से त्रस्त हैं। जिन उम्मीदों से सरकारें बनी थीं, उन उम्मीदों पे कोई सी भी सरकार खड़ी नहीं उतर पाई। एक मायूसी लोगों में है, चाहे वो केंद्र की सरकार की नाकामियां हो, चाहे राज्य सरकार की हो। और इस माहौल में हमें स्पेस मिल रहा है मेहनत करने का। जो हमने फैसला लिया अकेले लड़ने का, उससे हमारे कार्यकर्ताओं में जोश बना है। और 10 साल बाद पूर्वांचल में, बुंदेलखंड में, मध्य उत्तर प्रदेश में हमारे चुनाव चिन्ह पर लोग खड़े हो रहे हैं, हमारी नीतियों का प्रचार हो रहा है।
क्या वजह रही, क्या बातें हुई जिसके चलते आप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के खेमे में नहीं गए?
विपक्ष को एक मंच पे लाने के जितने प्रयास हो सकते थे, हर संभव प्रयास को हमने किया, पहल हमने की, कोशिशें हमने की, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्वार्थ टकराया होगा। जिस तरह से बिहार में महागठबंधन में मुलायम सिंह जी को जो एक जिम्मेदारी दी गई थी उससे वो पीछे हटे, शायद कुछ ऐसा ही कारण यहाँ भी रहा हो।
एक समुदाय है जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में काफी बाहुल है उनका, वो जाट समुदाय, उन्होंने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट दिया था और इन दिनों वो बीजेपी से नाराज हैं। थोड़ी नाराजगी उनकी आपसे भी रही है, तो आप कैसे मना रहे हैं उनको?
नहीं नहीं, कोई मनाने की बात नहीं है। अभी हाल में हम दिल्ली के जंतर मंतर पे भी अपने क्षेत्र के किसानों को लाए थे, जहां हमने मांग की थी कि किसान का कर्जा माफ होना चाहिए। जनता तक हमने बात पहुंचाने की कोशिश की है। और जो मुझे अब रुझान लग रहा है कि बीजेपी तो लड़ाई में, स्लिम मतदाता जो हमारा परंपरागत वोट था वो अच्छी संख्या में आ रहा है और हर जाति के कैंडिडेट्स को जो हमने खड़ा किया अच्छा समर्थन मिल रहा है।
तो आप अपने क्षेत्र में सर समाजवादी पार्टी की आलोचना कैसे कर रहे हैं?
हम ये बता रहे हैं कि आज मुख्यमंत्री पाक साफ अपने आप को साबित कर रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन 5 साल तो यही तो मुख्यमंत्री थे जिस राज्य में दंगे हुए, जिस राज्य में हर साल 2000 रेप और 5000 मर्डर होते हैं, जहां इनकी एक ही उपलब्धि है कि लखनऊ में उन्होंने 600 मीटर एक मेट्रो बनाई और 50 करोड़ प्रति किलोमीटर की लागत से एक सड़क बनाई, पूरे प्रदेश को क्या दिया है?
और मोदी और अमित शाह की आलोचना?
उसकी आलोचना तो बीजेपी वाले खुद ही कर रहे हैं मन ही मन, और वो जनता की जुबान पे है, वो देख रहे हैं कि कितना अहंकार। आज बीजेपी जो एडवर्टाइजमेंट उनके देखे हैं वो मानवतावादी सोच की बात कर रहे हैं। कहाँ गई थी वो मानवतावादी सोच जब 150 लोग नोटबंदी के कारण लाइन में खड़े खड़े मर गए।
ये थे अजीत सिंह, जो उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में इस बार पूरी सभी 300 से ज्यादा सीटों पर अपनी पार्टी की किस्मत आजमा रहे हैं। उनसे बात की थी प्रदीप कुमार ने। और आगे बढ़ने से पहले आइए नज़र डाल लेते हैं समाचार पत्रों पर कि आज दिल्ली के अखबारों ने किन खबरों को सुर्खियां बनाया है। जी हमारे साथ हरिता कांडपाल आ चुकी हैं इन अखबारों के साथ, जी बताइए।
जैसे अभी हम अजीत सिंह का इंटरव्यू सुन रहे थे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण का चुनाव है, इसी पर जनसत्ता ने जो है अपने पहले पन्ने पर लिखा है, यूपी पहले चरण में कई दागी मैदान में है, 168 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले चल रहे हैं और 143 उम्मीदवारों पर हत्या समेत कई गंभीर मामले हैं और ये सभी पहले चरण के चुनाव में
और ये सब सभी दलों के हैं, ये उम्मीदवार
सभी दलों के उम्मीदवार हैं। जनसत्ता की एक और खबर है उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी, 12 सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अभी भी आमने सामने हैं, दोनों में समझौता तो हुआ है लेकिन अभी भी जो है आमने सामने कई सीटों पर उम्मीदवार लड़ रहे हैं। इसके अलावा एक और अंतर्राष्ट्रीय खबर जो सभी अखबारों में छाई हुई है वो है हाफिज सईद से जुड़ी, जिन्हें पाकिस्तान में नज़रबंद किया गया हाल ही में जमात उद दावा के प्रमुख। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि उन्होंने एक बार फिर जो है जमात उद दावा ने अपना नाम बदल लिया है और इस बार ये नाम रखा गया है तहरीक आज़ादी जम्मू कश्मीर, और ये जो है जम्मू और कश्मीर के मामले पर ही काम करेगा, इस तरह की घोषणा भी की गई है। तो ये सारे ही अखबारों में छाया हुआ है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक और खबर है कि दिल्ली में जो ट्रैफिक जाम लगते हैं जिसके लिए काफ़ी चर्चा की जाती है, दिल्ली के ट्रैफिक जाम और प्रदूषण की, तो वो एक साल में उसका जो नुकसान है, जो कहा जाता है कि खर्च जो होता है वो है 60,000 करोड़ रुपये, यानी कि जो तेल डीजल पेट्रोल
जो नुकसान होता है
और दूसरी भी प्रदूषण के कारण जो नुकसान होता है और सड़कों को जो नुकसान होता है वो है ये खर्च। इसके अलावा तमिलनाडु से एक खबर है, हिंदुस्तान ने लिखा है कि शशिकला फिर बन सकती हैं सीएम, तमिलनाडु में एक बार फिर जो है सियासी गर्मी बढ़ चुकी है और आज AIADMK की अहम बैठक होने वाली है जिसमें ये फैसला हो सकता है।
जी हरिता बहुत शुक्रिया अखबारों की इस विस्तृत समीक्षा के लिए, और जरा ये संदेश सुन लीजिए।
১৯৬২ का भारत चीन युद्ध, चीनी जनमुक्ति सेना के फौजी वांगची हमलावर बनकर आए पर फिर कभी अपने मुल्क लौट नहीं पाए।
मैंने सीता इंडिया अंदर लाए, कोई कागजाज नहीं, डॉक्यूमेंट नहीं।
युद्धबंदी के तौर पर जेल काटी, मजबूरन भारत में ही बसना पड़ा, परिवार बसाया, पर जीवन की संध्या में अब चीन लौटना चाहते हैं वांगची।
बाल बच्चे है, परिवार है, तो उनको देखना पड़ेगा ना।
क्या घर लौट पाना इतना आसान होता है? वांगची का घर, सुनिए भारत में फंसे चीनी फौजी की कहानी मुझसे यानी विनीत खरे से सिर्फ BBC हिंदी रेडियो पर रविवार 5 फरवरी शाम 7:30 बजे दिन भर कार्यक्रम में और 6 फरवरी सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में। वांगची का घर
BBC की इस खास पेशकश को सुनना मत भूलिएगा आज शाम। और अब जरा भारत और पाकिस्तान के उर्दू अखबारों में कौन सी खबरें छाई रहीं, जानते हैं उर्दू अखबारों की समीक्षा में, जिसे तैयार किया है हमारे सहयोगी इकबाल अहमद ने, आपको सुनाएंगे दिनेश उप्रेती।
भारत और पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अखबारों की बात करें तो बीते सप्ताह पाकिस्तान में जमात दावा के प्रमुख हाफिज सईद की नज़रबंदी, भ्रष्टाचार से जुड़ा पनामा लीक्स मामला, अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कश्मीर का मुद्दा सुर्खियों में रहे। तो भारत से छपने वाले अखबारों में 5 राज्यों में होने वाले चुनाव से जुड़ी खबरें प्रमुखता से रहीं। पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अखबारों में भारत के गृहमंत्री राजनाथ सिंह का एक बयान पाकिस्तानी अखबारों में छाया रहा। राजनाथ सिंह ने भारत के एक निजी न्यूज चैनल को इंटरव्यू में कहा था कि भविष्य में पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करने की जमानत नहीं दी जा सकती। रोजनामा जंग लिखता है कि भारतीय गृहमंत्री ने इसी संदर्भ में इंटरव्यू के दौरान कहा था कि पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क है और अगर वो बदलता है तो भारत को इस तरह के कदम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर सीमा पार में सक्रिय कोई चरमपंथी संगठन भारत को निशाना बनाता है तो फिर सर्जिकल स्ट्राइक दोबारा नहीं करने का आश्वासन नहीं दिया जा सकता है। पाकिस्तान में छपने वाले जंग के मुताबिक पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि भारत के किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। रोजनामा एक्सप्रेस के मुताबिक जनरल बाजवा ने कहा कि LOC पर फायरिंग कर भारत अपने कब्जे वाले कश्मीर में हो रहे जुल्म से दुनिया का ध्यान हटाना चाहता है। रोजनामा खबरें के अनुसार पाकिस्तान की सूचना एवं प्रसारण मंत्री मरियम औरंगजेब ने कहा है कि कश्मीर का हर बच्चा बुरहान वानी है। चरमपंथी संगठन जमात उद दावा के प्रमुख हाफिज सईद को नज़रबंद किए जाने पर अखबार नवाए वक्त ने लिखा है कि पाकिस्तानी सेना ने हाफिज सईद की नज़रबंदी के फैसले का स्वागत किया है। रोजनामा खबरें ने इसी मुद्दे पर सुर्खी लगाई है, भारत शांति में ख्वाहिश को कमजोरी न समझे, पाक सेना। रोजनामा जंग ने लिखा है कि पाकिस्तानी गृह मंत्रालय ने हाफिज सईद की नज़रबंदी को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के तहत उठाया गया कदम करार दिया है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जरिए 7 मुस्लिम देशों के नागरिकों को अमरीका आने से रोकने को लेकर किए गए फैसले की खबरें भी सुर्खियां बटोरती रहीं। रोजनामा एक्सप्रेस ने अमरीकी विदेश मंत्रालय के हवाले से लिखा है, पाकिस्तानियों पर किसी तरह की पाबंदी लगाने का कोई इरादा नहीं है। रोजनामा सहाफत ने लिखा है, सूरज उगते ही ट्रंप का सूरज डूब गया, ज्यादातर अमरीकी ओबामा की वापसी चाहते हैं। रोजनामा सहारा ने बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख की एक चुनाव रैली का हवाला देते हुए लिखा है, आरक्षण को रखने के लिए बीएसपी का यूपी में सत्ता में आना जरूरी। गुजरात में 2002 में हुए दंगे से जुड़ी एक खबर भी हर अखबार में है। रोजनामा शहर ने पहली सुर्खी लगाई है, गुजरात दंगों के 28 अभियुक्त बरी।
तो ये थी उर्दू प्रेस की समीक्षा और अब इस हफ्ते का न्यूज मेकर, जिसमें बात की जा रही है स्पिनर युजवेंद्र चहल से।
पिछले दिनों बेंगलुरु के एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में क्रिकेट प्रशंसकों ने इंग्लिश टीम को एक युवा भारतीय गेंदबाज की फिरकी में फंसते देखा। ये खिलाड़ी हैं युजवेंद्र चहल और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। युजवेंद्र, इससे पहले जब आप भारतीय टीम में पिछले साल आपने डेब्यू किया था तो जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले थे, इस बार इंग्लिश टीम के खिलाफ खेलने का मौका मिला और मैन ऑफ द सीरीज चुने गए, कितनी खास सीरीज रही आपके लिए?
काफी खुश हूं, स्पेशली क्योंकि मेन सीरीज था और काफी इंपॉर्टेंट सीरीज था और सारे मतलब पूरा सब सीनियर खेल रहे थे तो काफी अच्छा लगा क्योंकि पहला होम सीरीज था मेरा इंडिया के लिए।
इस T20 सीरीज से आर अश्विन और रविंद्र जडेजा भारतीय टीम के दोनों सीनियर स्पिन गेंदबाजों को आराम दिया गया था, उनकी जगह आपका चयन किया गया, तो नर्वस थे, थोड़ा बहुत दबाव महसूस हो रहा था?
ये ऑब्वियसली होता है क्योंकि जिस हिसाब से अश्विन भैया और डड्डू भाई ने बॉल डालते आए हैं तो मतलब आप उनकी जगह बिल्कुल ले तो नहीं सकते, लेकिन थोड़ा सा ये भी था कि मेरे लिए काफी बड़ी सीरीज है तो मेरा ये था कि जब भी मुझे मैच खेलने का मौका मिले तो मैं उस चीज को पूरा ग्रैब करने की कोशिश करूं।
लेकिन जब तीसरे T20 मैच के लिए बेंगलुरु आ रही थी टीम, तो क्योंकि ये आपका घरेलू मैदान है, IPL की टीम का जहां तक सवाल है बेंगलुरु रॉयल चैलेंजर्स का, तो कॉन्फिडेंस तो थोड़ा सा जगा होगा?
जब भी यहाँ पे खेला तो मतलब एक घर जैसा लगा है, तो कोई ऐसा कोई प्रेशर नहीं था कि छोटा ग्राउंड है कुछ भी है, तो मतलब ऐसा लग रहा था कि अपना एक नॉर्मल मैच ही खेल रहा हूँ यहाँ पे तो। और स्पेशली जब यहाँ का जो क्राउड है हमेशा मतलब अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते ऑलवेज आपको सपोर्ट करता है।
युजवेंद्र, एक खिलाड़ी के तौर पर आपकी शुरुआत क्रिकेट से नहीं चेस के साथ हुई थी, फिर ये क्रिकेट की तरफ झुकाव कब हुआ और कैसे हुआ?
1998 में मैंने पहला चेस का नेशनल खेला और फिर 2003 में जब मैं वर्ल्ड कप खेल के आया चेस में तो फिर मैंने छोड़ दिया क्योंकि उस टाइम पे जाके आपको चेस चूज करना था या क्रिकेट चूज करना था और मेरा जो इंटरेस्ट था वो क्रिकेट में ज्यादा था, फिर मैंने क्रिकेट को चुना।
हमें एक और बात आपके बारे में मालूम चली कि क्रिकेट की प्रैक्टिस यानी अपनी गेंदबाजी की प्रैक्टिस शुरुआती दिनों में आप खेत में किया करते थे, क्या ये बात सही है?
हमारा जो खेत है डैड ने वहाँ पे विकेट बनाई थी तो एक्चुअली वो घर के पास भी था तो वहाँ पे क्योंकि एक जो चीज अपनी होती है आप वहाँ पे कभी भी जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं चाहे वो रात हो या दिन हो।
और युजवेंद्र, बस आखिर में आपसे जानना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में क्रिकेट प्रशंसक अब आपको किस टूर्नामेंट में खेलते देख सकते हैं?
नहीं, अभी मेरे रणजी ट्रॉफी के वनडे मैचेस आ रहे हैं, फिर उसके बाद IPL है।
युजवेंद्र से बात की राखी शर्मा ने और अब खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूँ आदेश कुमार गुप्त। जैसा कि अंदेशा था ठीक वैसा ही हुआ और कल न्यूजीलैंड ने भारत को एशिया ओशिनिया ग्रुप एक डेविस कप के युगल मुकाबले में 3-1 से हरा दिया। कल भारत के सबसे अनुभवी खिलाड़ी लिएंडर पेस और उनके जोड़ीदार विष्णु वर्धन को न्यूजीलैंड के ऑर्टम सिटाक और माइकल वीनस की जोड़ी ने 3-6, 6-3, 7-6, 6-3 से हरा दिया। इस हार के बावजूद भारत अभी भी दोनों एकल मुकाबले जीतने के कारण 2-1 से आगे है। दरअसल एकल के मुकाबले न्यूजीलैंड की युगल टीम ज्यादा दमदार है। आज उलट एकल में भारत के रामकुमार रामनाथन का मुकाबला फिन टियर्नी से और यूकी भामरी का मुकाबला जॉस स्टेथम से होगा। उधर इन दिनों भारत में खेले जा रहे ब्लाइंड 2020 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट में कल अहमदाबाद में भारत ने श्रीलंका को बेहद आसानी से 9 विकेट से मात दी। भारत के सामने जीत के लिए 187 रनों का लक्ष्य था जो उसने 13.3 ओवर में ही केवल 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया। प्रकाश ने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 99 रन बनाए। इससे पहले श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी की दावत पाकर निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 186 रन बनाए।
खेल समाचारों के साथ ही समय पूरा हो गया है नमस्कार भारत का। आज शाम 7:30 बजे फिर आपसे दिन भर में मुलाकात होगी। सभी साथियों संग निखिल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।